परवाज दी, मैंने खुद को तब आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तब आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। ऐसे तो हम सभी न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो नया ही देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। पीछे का भी न्यूज़पेपर आ जाए कहेंगे ये तो कल का है, आज का नहीं है। लेकिन आज बाबा जो समाचार सुना रहे हैं वो सूक्ष्म वतन का है। वो 30/6/74 के समय जो बाबा ने न्यूज़ सुनाई है, बाप दादा की चैनल की न्यूज़ हम सुना रहे हैं, बाप की तो आपका कनेक्शन रिलेशन बाबा के साथ क्लियर होने के कारण, उनकी टचिंग और आपके कैचिंग क्लियर होने के कारण नए नए न्यूज़ तो आपको मिलते ही रहते हैं। बाकी ये न्यूज़ तो 74 की सुनाएंगे। ओम शांति। बाप दादा सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन की समाचार सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? बच्चों का संकल्प चलता है कि सूक्ष्म वतन कैसा है, हम भी अनुभव करें, हम भी सैर करें। ऐसा भी संकल्प बच्चों का क्यों चलता है? क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतन में अपनी कारोबार करते हैं, तो बच्चों की भी दिल होती है कि हम बच्चे भी सूक्ष्म वतन में जाए, देखे, बाप के साथ बैठे, अनुभव करे। तो इस संकल्प से लेकर के बाप दादा सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं। कहीं सोचते हैं कि बाबा ऊपर में क्या करते हैं, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले तो बच्चों के लिए फिक्स है। अमृत वेले निश्चित किया हुआ है बच्चों के लिए, बाकी का समय में अन्य आत्माओं की भावना इच्छाएं अनुसार फल देने का, और जो भी रजो प्रधान कर्म कर रही है आत्माएं उसको भी अल्पकाल का जो कर्म है उसका भी अल्पकाल का भावना अनुसार फल देने का समय सेवा करते हैं ऐसे। बाकी भक्त आत्माएं जो सच्चा भक्त है उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं या साक्षात्कार उसको कराने का पार्ट बजाते हैं, और जो ब्राह्मण आत्माएं अभी तक कल्प के अंदर पार्ट है लेकिन छिपी हुई है, जो नहीं निकली है, उनको खोजने के लिए ब्राह्मण बच्चों को निमित्त बनाते हैं, उसको टचिंग करते हैं, ये भी पार्ट बजाते हैं। विज्ञान सत्ता वैज्ञानिकों की भी, जो विनाश के लिए निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उसकी भी देखरेख रखने का कार्य बाबा करते। और जो ज्ञानी आत्माएं है, ज्ञानी तो आत्माएं और स्नेही सहयोगी आत्माएं जो सेवा के कार्य में सारा दिन कार्य करते हैं, उसको भी मदद देने के लिए बाप बंधे हुए हैं, क्योंकि हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तो बाप को ये कार्य के लिए बंधे हैं, तो बापा उन बच्चों को भी मदद देते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, सेवा का पार्ट क्विक और फास्ट कहेंगे। शिव बाबा के साथ फास्ट गति से सदा सहयोगी बनने का, सदा साथी बन के कार्य करने का, जिसमें बाबा निमित्त बनते हैं। तो व्यक्त भाव में रहने से अव्यक्त स्थिति में, व्यक्त भाव की स्थिति से स्पीड आती है, इसलिए ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं, जिसके कारण सेवा में स्पीड आई है। व्यक्त भाव में जब थे, साकार में थे, तो देह के कारण साधनों का, समय का बंधन रहता था, कर्म भोग के कारण भी स्वयं के प्रति समय देना पड़ता था, स्वयं की सेवा साथ साथ बच्चों की भी सेवा के लिए समय देना, और तीसरा विश्व की सेवा के लिए भी हमें समय देना पड़ता था। तो ये समय साधनों का बंधन, साधन को आधार बना करके चलना पड़ता था। लेकिन जब ये देह का बंधन व्यक्त से अव्यक्त हुए, तो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? एक तो स्वयं के प्रति अपना समय एनर्जी नहीं देना पड़ता है, वो समय एनर्जी बच जाता है, और स्वयं संपन्न संपूर्ण होने के कारण पुरुषार्थ की स्पीड, सेवा की स्पीड फास्ट हो गई। पुरुषार्थ तो समाप्त ही हो गया है, लेकिन सेवा अर्थ स्पीड फास्ट हुई। साथ साथ साधनों को आधार नहीं बनाते, इसलिए भी संकल्प द्वारा भी सेवा की स्पीड फास्ट हुई है। तो ब्रह्मा का पार्ट, अभी ब्रह्मा पिता का पार्ट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन और ही तेजी से चल रहा है, वो अंत तक चलता रहेगा। जैसे साइंस वाले देखते हैं कि कितना फास्ट और सूक्ष्म रीति से साधनों को प्रयोग में लाते हैं, और जितना हो सके उतना सूक्ष्म बनाते जा रहे हैं साधनों की स्थिति और गति, सूक्ष्म बना रहे हैं। तो एक सेकंड में कैसे काम हो जाए, उसमें वो सफल हुए हैं, वो विनाशकारी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हे बच्चे, आप तो स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए हो, तो आपका स्थापना का कार्य में निमित्त हुए बच्चे, आपकी स्थिति और गति सूक्ष्म और तीव्र हुई है, तो स्वयं को ही, हमें स्वयं को ये चेकिंग करके स्वयं ही देखना है कि मेरी सूक्ष्म स्थिति, पुरुषार्थ की गति की रफ्तार कितनी सूक्ष्म हुई है, यह हमें चेक करना है। ब्रह्मा बाबा का पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। बाबा ने स्थान, स्थिति और गति का ही परिवर्तन किया है। साकार से अव्यक्त हुए, व्यक्त से अव्यक्त स्थिति बनाई और गति भी स्पीड पकड़ ली। तो ये स्थान, स्थिति और गति की स्पीड फास्ट हुई है, तो हमें भी अपनी स्थिति और गति की स्पीड को फास्ट करना है। फास्ट गति बनाने के लिए हमें बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने भी जो कार्य है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, आदि पिता का, जगत पिता, नई जगत की रचना करने वाला, वो पार्ट अभी बजा रहे हैं और सर्व वंशावली को भी अभी उसको भी पार्ट बजाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको भी पार्ट में आगे लाने के लिए निमित्त बने हुए हैं नई दुनिया के पार्ट बजाने के लिए। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा अभी भी वो कार्य कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को भी ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों को भी निमित्त बनाया हुआ है विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए, नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए। तो वो कार्य अभी संपन्न हुआ है, बाबा पूछ रहे हैं कि अभी संपन्न हुआ है, तो जो अभी वो कार्य ही संपन्न नहीं हुआ है तो ब्रह्मा बाबा जा कैसे सकते हैं? तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट अंत तक है, अंत तक रहेगा, आपके साथ है। नई दुनिया की स्थापना का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, नई दुनिया अभी आई नहीं है, नया युग नहीं आया है, तब तक उनका पार्ट चलता रहेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। स्नेह होने के कारण बच्चों के संकल्प चलते हैं, लेकिन ये गुह्य राज है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का कर्म बंधन भी चुक्त हो गया, कर्म संबंध भी चुक्त हो गया और जन्म मरण का चक्र भी चुक्त हो गया, इसलिए वो बंधन मुक्त आत्मा है। वो जहाँ जितना समय अव्यक्त रूप से पार्ट बजाना चाहे बजा सकती है, क्योंकि स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति रिद्धि सिद्धि स्वरूप वाली आत्मा बन गई है। स्वयं शिव बाबा के साथ फर्स्ट नंबर की मददगार आत्मा, सारे विश्व का कल्याण करने के लिए नंबर वन मददगार आत्मा है। ऐसी आत्मा जो अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले भी स्वयं का स्वरूप बदली कर सकते हैं, तो क्या ये अपना अव्यक्त स्वरूप से जितना समय चाहे ड्रामा के पार्ट के अनुसार स्वयं पार्ट नहीं बजा सकते हैं? बाबा ने एक बात कही। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे देह के आकर्षण में आने का कारण क्या है, क्यों आत्मा देह के तरफ खींचती है? तो अव्यक्त से व्यक्त में आने का कारण या निराकारी से साकार में आने का कारण, बाबा ने तीन कारण बताए हैं। एक तो बताया कि कर्म बंधन है जो उनको खींचता है, वो नीचे ले आते हैं। दूसरा है कर्मों का संबंध, संबंध का भाव उसको खींचता है। और तीसरा है देह का पार्ट उसको खींचता है जो नीचे ले आता है। और भी बात बताई कि पुराना शरीर है तो उसको नए शरीर में जाना है, तो नया शरीर भी उसको खींचता है पार्ट बजाने के लिए, उसके कारण भी वो वहाँ खींची चली जाती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो न कर्म का बंधन है न संबंध का बंधन है, सिर्फ उसको एक ही बंधन है, वो नई दुनिया की स्थापना का पार्ट को संपन्न करने का, इसलिए उसमें तीव्र गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी और कोई बंधन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची, ब्रह्मा बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, सारे विश्व का परिवर्तन का ठेका लिया हुआ है, वो ठेका का पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। बच्चों को कार्य सिखाने दिखाने के लिए निमित्त बने हुए हैं, तो वो फाउंडेशन की नींव है, वो नींव कैसे हट सकती है? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे दिख और करेंगे, इसलिए मैं इस कार्य से हट नहीं सकता हूँ। मैं सदैव बच्चों के साथ हूँ और अंत तक साथ रहूँगा। इसलिए बाबा कहते हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अर्थात अंत तक हमारा जो पार्ट है साथ में हम पूरा करेंगे, उसका अर्थ ये है। पार्ट साथ पूरा करने की बात है, मरने की बात माना, हम 84 जन्मों से मर जाएंगे, नया वन 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 हो जाएगा, तो इसी हिसाब से बाबा कह रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों के सन्मुख कर्म करके बता रहे हैं, कर्म सिखा भी रहे हैं, इसलिए सिखाने का और दिखाने का पार्ट है वो अब पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ब्रह्मा बाबा अभी ब्रह्मा का पार्ट बजा रहे हैं। ये बच्चों का संकल्प था, इसलिए बाबा ने ये बच्चों को समाचार ये बात बताई। बाकी अमृत वेले की बात है, बाबा कहते कभी बताएंगे। तो ये एक मुरली थी, दूसरी भी मुरली है एक, वो तो शॉर्ट है लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा था। रूहानी सेना जिसका मार्शल लॉ उसमें बताया गया है, शिव बाबा है रूहानी सेना के सेनापति है। सेना होती है वो शस्त्रों से सजी हुई होती है, लॉ एंड ऑर्डर में चलती है। तो हम भी रूहानी सेना के अंदर शिव बाबा सेनापति है। हमारी रूहानी सेना का लॉ एंड ऑर्डर क्या है? न स्वयं की देह को देखना, न दूसरे की देह को देखना। इसलिए बाबा ने एक मुरली में भी बताया था, स्वयं को मणि समझो और शरीर को सांप समझो। तो दूसरे की देह पर नजर ही नहीं जाएगी, बार बार जाति माना हम सांप को ही देख रहे हैं, मणियों को कम देखते हैं। तो अगर बाबा कहते अपनी देह तरफ नजर जाती है, दूसरे की देह तरफ नजर जाती है, तो बाप से मिलन, बाप से कनेक्शन से दूर रह जाएंगे, ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा, मिलन नहीं हो पाएगा। इसलिए समीप का स्टेप, नज़दीक जाने का स्टेप उठाने के लिए अपनी देह को भी और देह के जो भी सामने आने वाले हैं उनको भी देह के रूप में ना देखकर आत्मिक स्वरूप में हम देखने का अभ्यास करें। ओम शांति। ज्ञान में 1976 में आना हुआ, तब हमारी उम्र 16-17 साल की थी, जब स्कूल लाइफ पूरी किया था और कॉलेज में प्रवेश किया था और ये ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिलने के कारण रुचि तो ऐसी ही थी कि अभी ये कॉलेज को छोड़ करके यही ज्ञान सुने, ये सब बेकार का ज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसको छोड़ देते हैं। लेकिन घर में बंधन होने के कारण दूसरा संकल्प आया कि अगर वो कॉलेज का ज्ञान छोड़ दिया तो घर से बाहर ही कौन जाने देगा आपको। पहली बात तो ये है, घर में ही बैठे रहना पड़ेगा, फिर तो सेंटर न जा सकेंगे, न मुरली सुन सकेंगे, न अलौकिक पढ़ाई हो सकेगी। इसलिए उसके कारण ये चालू रखना जरूरी है, दूसरा संकल्प आया। हमने बोला चलो ठीक है चालू रख लेते हैं, इसके बहाने से घर से बाहर तो जाएंगे तो सेंटर तो जा सकेंगे। तो हमेशा नियम बना लिया था कि 2-4 पीरियड 5 पीरियड रहते थे, हम 2 ही पीरियड भरते थे, बाकी के 2 है या 3 हम छोड़ देते थे, कभी भरते नहीं थे। तो कॉलेज तो हमने ज़्यादा गए नहीं, लेकिन बाबा की पढ़ाई में ही हम रहने का लक्ष्य रखा था। तो सेंटर जाते थे, मुरली पढ़ते थे और सेंटर वाली बहनों को बोलते थे कुछ सेवा हो तो बताओ, तो कभी झाड़ू पोछा की या कभी बर्तन मांजने की कुछ भी सेवा दे देते थे उनके पास जो होती थी वो, तो हम आधा घंटा वो भी सेवा कर लेते थे और ऐसे घर में आ जाते थे। तो घर में तो बंधन बहुत होने के कारण फिर हमें कहाँ जाने को नहीं मिलता था। एक बार हमारे वहाँ मणिनगर में प्रदर्शनी लगी थी, तब हमको हुआ कि हम भी प्रदर्शनी में जा कर के सेवा करें। तो हम सेवा के लिए निकल गए और प्रदर्शनी तो फिर रात को 10 ही बजा देती थी, आते आते 11 भी बज जाता था। तो पिताजी तो थे ही एंटी, तो हमें तो गुस्से से ना ही कर दिया, नहीं जाना है। फिर भी उमंग उत्साह बहुत था, तो दूसरे दिन भी चले गए और डांट मिली। ये तीसरे दिन, 3 दिन की प्रदर्शनी, तीसरे दिन भी गए, जाने दो, ये बाप जो कहता है उसकी सुनो, उसकी कम सुनो, ये बाप की ऐसे भी मन में भी तो थोड़ा रहता है। फिर तीसरे दिन तो डंडा ही उठा लिया, बाहर निकलो, चाहिए ही नहीं, हमारी सुनते नहीं, चले जाओ यहाँ से। गुस्से में 12 बज गया था, तभी गुस्सा करते। फिर हम तो 12 बजे फिर वापस सेंटर पहुँचे, साथ में छोटी बहन को लेके गई थी, तो उसको भी निकाल दिया, तो उसको भी लेकर के मैं आई, तो छोटी बहन तो फिर रात को अंधेरे में निकाल दिया, तो वो तो रोने लगी। मेरे को तो बाबा की मदद थी, तो मुझे तो कोई फीलिंग वीलिंग नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्या क्वेश्चन मन में कभी नहीं आता था, आंसर ही आता था ये करना है, तो प्रश्नचित्त माइंड नहीं रहता था, प्रश्नचित्त क्या करना है वही सामने आता था। फिर मैंने फटाफट बोला कि घर से निकलो, हमने थोड़े दो पैर कपड़े ले लिए, बहन के भी ले लिए और थोड़े पैसे ले लिए, क्योंकि हमारे पैसे में लॉक नहीं रहता था, हमें थोड़े पैसे भी निकाले, बाहर जाएंगे तो पैसे, ऑटो में भी पैसे तो लगेंगे, तो पैसे निकाल। फिर हम चले गए बाहर, सेंटर पहुँचे, 12:30 हो गया। दीदी को बताया तो दीदी त्रिवेणी और उसकी बहन को लेकर के आई है, घर से निकाल दिया है। दीदी ने कहा अच्छा, अभी रात को तो कहाँ भेजेंगे उसको, बाबा के कमरे में सुला दो, सवेरे फिर देखेंगे घर भेज देंगे। फिर हम तो रात भर नींद तो आई नहीं, तो 2 बजे फिर मम्मी आई, पापा ने फिर गुस्सा ठंडा हुआ होगा, फिर बोला होगा जाओ लड़कियों को ढूंढ के आओ। वो कहे मैं कहाँ ढूंढने जाओ, बोला सेंटर पर ही हो तुम, सेंटर जाके ढूंढ के लाओ। सेंटर पर आया, सरला दीदी को आवाज लगाई, सरला दीदी ने कहा हाँ आपकी बच्ची आई है, ऊपर सुलाया है, सवेरे ले जाना, ऐसे बोला। फिर मम्मी तो चली गई, बोला सोई होंगी ये करके। तो हमने नीचे से ऊपर से आवाज़ तो सुनी, ये दीदी बात कर रही है, क्योंकि साइलेंस होता है रात को, तो आवाज़ तो स्पष्ट सुनाई देता है क्या कौन बात कर रहा है। फिर सवेरे दीदी, सवेरे शिव जयंती थी, तो शिव जयंती के निमित्त हम ध्वजारोहण के कार्यक्रम में रेडी होके खड़े थे, तो दीदी ने इशारे से मेरे को बुलाया, बोला आपके मम्मी आए थे, आपको बुलाया है, घर जाना है। फिर मैंने निर्णय दीदी को सुनाया कि दीदी हम घर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी मौसी के घर जाऊंगी। ऐसे करके हम अपनी मौसी के घर चले गए, और मौसी मौसा थे, उनको अपने बच्चे नहीं हैं, तो फिर हम लोगों को ही फिर अच्छी तरह से रखते थे बच्चे की तरह ऐसे, तो हमारा भी आना जाना कभी कभी रहता था उनके पास। तो हमने सोचा कि हम वहाँ चले जाते हैं। फिर मौसी मौसा ने न्यूज़ किया होगा कि आपकी बच्ची हमारे पास है, तो पापा ने, वो तो थोड़ा अहम वाले थे, तो बोला मैं तो लेने नहीं जाऊँगा, दूसरा किसी को भेजा मेरी बच्चियों को लेके आओ, तो दूसरा मौसा है वो लेने आया। फिर हमने बोला कि आपने तो हमको निकाला नहीं है, जिसने निकाला है वो लेने आएंगे तो हम आएंगे, नहीं तो हम क्यों आए। उनको वापस कर दिया हमने, क्योंकि जो बात करना है उसे डायरेक्ट करना है ना, इनडायरेक्ट बात में क्या मजा, फिर बात भी बदल जाती है इनडायरेक्ट में। तो फिर हम नहीं गए, 15 दिन हो गए, फिर पापा को अकेले तो नहीं आएगी। उसके बीच में मेरी जॉब लग गई थी, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी टेलीफोन ऑपरेटर में, मेरा लगभग 1.5-2 मास ट्रेनिंग का हो रहा था, 3 मास की ट्रेनिंग, तो 1 महीना शायद कुछ बाकी था। तो मैं बोला 3 मास हो जाएंगे, फिर तो मेरी पेमेंट पूरी आ जाएगी, फिर तो हम अपने पैर पर है, किसी की क्यों अपने को पड़ी है, ऐसे अपने मन में था। मौसी रखे ना रखे, हम अपनी मर्जी से रहेंगे मकान किराए पर लेकर के, ऐसे इतना मन में था। तो मौसी को ये बात बता दिया, मेरे बोला अभी तो मेरे पास पेंशन और पैसा नहीं है, लेकिन आएगा मेरा पैसा 1 महीने के बाद पेमेंट, तो मैं आपके पास रहूँगी, आपको पेमेंट देंगी। मासी कहेंगी अच्छा है ना, मेरे को बच्ची मिली और पैसा भी मिलेगा, तो क्यों ना करेगी। लेकिन पापा को हुआ कि ये चली जाएगी तो उनकी भी इनकम कम हो जाएगी ना, होता है ना ऐसे गलोकिंग में। तो वो फिर लेने आए तो मैंने बोल दिया कि हम ऐसे नहीं आएंगे, हमारी बातें कुछ है वो हम आपको लिख के देते हैं, वो आप उसको मानेंगे तो हम आएंगे। फिर मैंने उनको लिख करके दिया कि हम रोज़ सेंटर पर जाएंगे, आप हमको मना नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि वो फिर शादी के लिए वो सभी उनका चलता रहता था, कोई ना कोई को लाते रहते थे और फिर तंग करते रहते थे, तो फिर दूसरी बात लिखी कि शादी के लिए आप हमें कोई बात नहीं कहेंगे शादी करने के लिए, वो दो बात लिख करके दिया। क्योंकि एक बार शादी के लिए किसी को लेकर के आए तो कई बार तो मैं क्या करती थी, सहेलियों के घर चली जाती थी, एडवांस में पता चलता था, कई बार सेंटर से आती ही नहीं थी तो कहाँ ना कहाँ छिप जाती, तो एक बार तो मेरे को बताया ही नहीं, ऐसे ही बोला रात के समय बुलाते, तुम कहाँ जाएगी रात के समय, तो मैं तो ओढ़ के ऐसे अच्छी तरह से सो गई, कितना भी हिला हिलू नहीं ऐसे। फिर एक बार सोचा कि चलो दिन में बुलाते, उसको बताते नहीं, फिर दिन में बुलाए किसी को, ये तो रोज का चक्कर है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे को मन में आया, बाबा ने भी तो शक्ति दिया, नहीं तो मेरी तो हिम्मत नहीं बाप के सामने बोलने की कभी भी, लेकिन बाबा की शक्ति से सब बोलना सीख गए। तो सभी बैठे थे चार पांच लोग, मैं तो सामने गई, मुझे बुलाया फादर ने, देखो आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पिताजी को है कि मेरी शादी करे, लेकिन मेरे को ये इच्छा है कि मेरे को शादी नहीं करना है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने का है। तो सभी तो मेरे को देखते ही रह गए और मेरे बाप को भी देखते रह गए कि ये क्या हो गया, उसने तो सीधा सट, तो मेरे बाप की तो इंसल्ट सबके बीच में हो गई ना, तब से वो नाम लेना भूल गए मेरा। बोला बेटा आपको कहना था तो मुझे कहना था ना, सबके बीच में क्यों कहा। मैं बोला ये तो फायदा, मन में आया कि ये तो फायदा मुझे ही हुआ कि आप दोबारा बोलेंगे नहीं, आपको ही बता दी तो आप फिर वही की वही बात बोलते रहते। तो ऐसे फिर कभी किसी से संबंधी को लाते थे, बोला उसको समझाओ इसको समझाओ। एक बार मौसी को लेके आए, मैं बोला आप मुझे क्या समझाएं, मैं ही आपको समझाती, आपको जो करना है आप कर लो, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो, जिसको करना है वो करो, मैं बोला मुझे नहीं करना है। तो ऐसे करके फिर वो सभी चुप हो गए। तो एक बार ऑफिस में भी फिर उन्होंने मैं सेंटर में चली गई थी, तभी ऑफिस में भी उनके, मेरा फादर था वो टेलीफोन ऑफिस में ही था, हेड क्लर्क थे, तो सभी परिचित रहते थे, स्टाफ वाले हमारे साहब और हमारे साथ सेवा करने नौकरी करने वाले, तो उनको बोलते थे कि उनको समझाओ कि वो घर आ जाए ऐसे, तो मुझे समझाते थे। मैं बोला देखो लड़की है वो कोई बुरा कर्म करके भी किसी के साथ चली जाती है तो कितना भी समझाते वापिस थोड़ी आती है, गलत निर्णय है तभी भी नहीं आती है, तो मैंने तो गलत निर्णय लिया है, मैंने तो सही निर्णय लिया है, अच्छी जगह गई हूँ, मैंने खराब काम क्या किया है जो मैं वापस आऊँ, मैं जो किया वो अच्छा किया है और मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। तो फिर वो भी समझ गए, फिर मेरे को कोई समझाने नहीं आते थे। ओम शांति।